คนรู้ฟังหรือสมาธิสวดว่านามาริธาตุรัตน์เมื่อเสด็จขึ้นจิตละฟังหรือสมาธิสวดว่านามาริธาตุดวงตาสายเงาบ้างนะมันจะได้สุขีเหรอทำไมอาทิตย์ที่แล้วยังสุขใจกันตัวมันก็เลยมันจึงเกิดมาแล้วสิ่งเมื่อก่อนที่จะสอนที่จะทำกุลวาระนะว่าจะอาทิตย์นี้สิ่งเมื่อก่อนจะได้รับเหรอคุณจะได้สุขใจजाते जाते ही वहाँ की यशिदों की रज़ों की जो कुछ समस्याएं हैं वो भी मैं देखना चाहता था समझना चाहता था। आपको पता है कि 1962 के बाद यहाँ जो देश कमी संकट हुआ वो उसके बाद यहाँ से कुछ लोगों से हट गया है लेकिन यहाँ की क्या क्या सुविधाएं हैं वो देखना उनकी जो कुछ अब बातें समझने के लिए बड़ा ज्यादा था उनसे मैं उस्मानाबाद डीजल होते चले जाना चाहता हूँ जब पता चला आपने मेरे दोस्त को हमारे एम जी है यहाँ के तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ चंद मिनट के लिए तो आप यहाँ ठहर जा तो जो दोस्त का आदेश तो मानना ही होता है मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनका आदेश माना आप लोगों से मैं मिल पाया आज अभी अभी आपके सामने आपके नगर पालिका के प्रेसिडेंट साहब ने बड़े मोहब्बत से एक अभिनंदन पत्र दिया है और एड्रेस दिया और मुझे वो एड्रेस सुनते हुए बहुत पुरानी याद आती रही मेरे मन में कि ये बीजर सड़क से पूरा ऐतिहासिक स्तर है कई सदियों का इतिहास बीजर की बादशाह की कई कहानियां हमारे यहाँ में मशहूर बनी हुई है और जो मंत्री सबसे बात की बात यह वो कह रहे कि उनके मिनिस्टर को बताने के लिए कुछ भगवान उतरे जमीन पर मैं अभी प्रार्थना कर रहा था कि हमारे अभी भी मिनिस्टर के मदद के लिए विश्वास रखा आया तरह की प्रार्थना हो रहा लेकिन ठीक बात है अंग्रेजी ने कहा तो है कि गॉड हेल्प नोज हू हेल्प देमसेल्फ जो अपनी मदद करना चाहते हैं उनके मदद के लिए भगवान हमेशा तैयार रहता है तो हम क्या करें आपके हमारी क्या समस्या है क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें समझने की आवश्यकता है आपके देश का एक सुरक्षा मंत्री के नाते मेरे सामने जो समस्याएं आती है उसके बारे में मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा जो वक्त मेरे लिए कम है और हिंदुस्तान के सामने आज इतनी समस्याएं हैं इतनी मुसीबतें हैं कि इन सबका जिक्र करना तो कुछ और देर बजे यहाँ आपके सामने एक लंबी तकरीर चलनी पड़ेगी लेकिन ये डिफेंस की जो समस्या है इसकी मोटी मोटी बातें आपके सामने मैं रख दूंगा कि क्या सवाल है डिफेंस का सवाल क्या मानी है आज बात तो जाहिर है तो हमारे देश से पहले से ही एक नीति बनाई थी और मैं मानता हूं कि दुनिया के तौर पर वो नीति आज भी ठीक मालूम होती है क्या नीति शुरू है वो नीति एक ये थी कि हम हमारे आजादी के बाद इस देश को इस ढंग से बनाना चाहते थे कि हमारे देश के खिलाफ कोई दुश्मनी करने की तैयारी न करे क्योंकि जाहिर बाकी कई सदियों के बाद हिंदुस्तान आजादी को स्थान बना और कोई अगर देश अपने को बनाना चाहता है तो ये बनाने का काम आसान नहीं होता जब तक वो अपनी पूरी ताकत अपनी पूरी शक्तियां अपने पास के पूरे साधन उसी एक काम में नहीं लगा देश के नेता पंडित जवाहरलाल जी ने यह नीति अख्तियार की कि हम किसी की दुश्मनी नहीं करेंगे हम सबसे दोस्ती रखने की कोशिश करते रहेंगे और वो ये काम दूसरों को 12-14 साल से चला लेकिन दुनिया बदलती है, बदलने वाली दुनिया। अब बदली दुनिया हमने ये भी देखा, लेकिन 15 साल ये देश में कुछ उसका फायदा भी बड़ा रूप में किया। और ये फायदा ये था कि जो हमारी पूरी ताकत, वो पूरी ताकत हम देश की शक्ति बनाने के साथ में लगाते हैं। तो कुछ ताकत बनी उसे आज ये नहीं कह सकते, आज ये मुझे अभी कह सकते हैं कि आज कितनी भी खामियां है, खाने की है, शिक्षा की है और कई चीजों की खामियां तो है, लेकिन खामियां तो उन सदियों का जो कुछ खराब नहीं बना उससे भी आई हुई कुछ खामियां है, लेकिन कुछ यादें हैं हमारे देश में। हम ये नीति अख्तियार हमारे देश में नहीं करते तो जो कुछ हम काम कर पाए वो भी नहीं करता, क्या कर पाए वो बताए इसका जितना नहीं करते। ये नीति हमने बनाई कि हम दुनिया के हर एक दोस्त के देश के साथ दोस्त बनाएंगे, न खाली पाकिस्तान के साथ न खाली चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ तो दोस्ती करने का इरादा था, इसलिए तो हमने उनको वो पहले बंटवारे को माना। पाकिस्तान के जनता के साथ उनको भाईचारे का नाता हमारा था, आज भी है। हिन्दुस्तान की जनता और पाकिस्तान की जनता के बीच तो कोई दुश्मनी है नहीं, हमने क्यों माना बंटवारा को? हम तो बंटवारा नहीं मान पसंद करते थे, एक हमारी नीति के तौर पर हम नहीं पसंद करते। फिर भी हमने ये माना कि छोटा भाई है, ये अपना अपना काम अपने ढंग से करना चाहता, अलग रहने से ठीक है, उनको रहने से इरादा था। देखते चीन की बात तो जाने बात है कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हम उठाते थे हमारे देश, मैंने उठाया किसी के मजाक करने के लिए, मैंने कहा मैं भी खुद गया था, बड़े जोर जोर से नजर आया। मुझे याद है मैं जब आपके आम सभा में जा रहा था तो 1907 में मैं जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री था तो 1907 में चयन ला आए मंडी आए तो मैं उनके स्वागत के लिए गया था और हाथ से फूल हार लेके मैं वहां गया। वो वक्त प्लेन से बाहर आते हैं, उन्होंने बड़ा जोर से हाथ उठा के कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और अपना मेहमान इस तरह से कहता है तो मेरा भी खर्चा, मैंने मेरा हाथ उठा के कहा कि चीनी हिंदी भाई भाई। कहा देखिए मेरी बात बदल जाती है 1907 की बात में और 1962 में कैसे चीज बन गई। एक बात जाना थी कि उनके हमारे मन में उनके लिए मोहब्बत थी, हमारे हाथ में उनके लिए फूल थे, लेकिन वास्तव से हमें पता चला कि उनके हाथों में हमारे लिए फूल नहीं थे खाकर भी, और जिनमें नहीं थी मोहब्बत का लेकिन था कोई जहर, वो सभी का जहर था। तो उससे एक बदल गई स्थिति हिन्दुस्तान की, हिन्दुस्तान के सवालों की पृष्ठभूमि ही बदल गई। और उस वक्त 2.5-3 साल ये हमें देखना पड़ता है कि एक हमारा पड़ोसी, एक पुराना पड़ोसी, प्राचीन पड़ोसी और बड़ा शक्तिशाली पड़ोसी, उसकी शक्ति नहीं है, वो हमारे लिए अपने मन में दोस्ती तो नहीं रखता, इतना ही नहीं लेकिन कुछ नहीं रखता है, लेकिन बाहर क्योंकि कुछ बातों की बात नहीं रही, कुछ कहने की बात नहीं रही, उन्होंने ऐसा बर्ताव भी हमारे साथ किया। अब पाकिस्तान उनके साथ दोस्ती बनाने की बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कुछ नाता भी तो हम एक थे, पहले एक भाई भाई थे, उनमें से कई मुसलमान थे कई हिंदू थे, लेकिन आखिर सदियों के लिए हम इस देश में रहे, एक रिश्ता है हमारे और उनके बीच। लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच में क्या रिश्ता है? पाकिस्तान दावे के साथ कहता है कि वो एक इस्लामी देश है, ठीक है, लेकिन चीन तो इस्लामी देश नहीं, तो फिर क्या नाता है दोनों के बीच? जाहिर है कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो कम्युनिस्ट देश नहीं, तो फिर दोनों के बीच एक जगह रखने वाली क्या चीज है? एक ही बात है दोनों के बीच, न है धर्म चाहे राजनीतिक नीति, लेकिन दोनों के बीच एक चीज है कॉमन, वो यह है कि हिन्दुस्तान के प्रति नफरत है। देखिए दुनिया में चीजें चलती है, बढ़ती भी है और कायम भी रहती है, वो चीजें रहती है कि जिसकी बुनियाद मोहब्बत हो, जिसकी जिसकी बुनियाद को जिसे वैल्यू की भूल कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, वो हो सकती है। लेकिन नफरत की बुनियाद पर खड़ी हुई चीज दुनिया में कभी असफल नहीं होने वाली, कभी कायम नहीं होने वाली। ये नफरत की बुनियाद पर हमारे खिलाफ में एक चीज बनाई हुई हमारे पड़ोसी देशों में, उनके बीच एक बात है तो क्यों ये हिम्मत उनके मन में आती है क्या? देखिए जिनके साथ लड़ना हो चलना हो तो चीन के एक मिलिट्री फिलोसॉफर बने, एक दर्शक थे, तत्वज्ञानी थे, आप कुछ कहे पता नहीं मुझे, एक बड़ा सुंदर था लेखक है, 2000 साल के पहले उन्होंने लिखा है, चीनी है इसलिए कहता मैं, उन्होंने कहा कि किसी के साथ दुश्मन के साथ लड़ना हो तो दुश्मन को पहले समझ लेना चाहिए। जब तक हम दुश्मन को पहले और पूरी तरह से समझ नहीं लेते तब तक दुश्मन के साथ कभी सफल नहीं कर सकते। तो मैं वही दर्शकों को सफल को अपना गुरु मानता हूं। अब हमें चाइना के साथ कुछ करना भी हो और उनके साथ कामयाबी से लड़ना हो तो चीनी वालों से हमें समझना है कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या ख्याल था, हिन्दुस्तान के प्रति दुश्मनी क्यों करना चाहते हैं। एक बात जाहिर बात है कि हिन्दुस्तान एक जमहूरियत से काम करने वाला देश है, उसकी अपनी ट्रेडिशन पुरानी हिसाब से रही और चीन को यह भाव है अपने मन में कि ये जमहूरियत की रीत, ये जमहूरियत का तरीका ये एशिया के देशों में सफल बना तो फिर चीनी वालों का कुछ चलने वाला नहीं आगे हो चीन तो वो दुनिया को जाहिर करना चाहते हैं कि जमहूरियत से काम करने वाला हिंदुस्तान कमजोर है, असफल है अपने कामों में और ये देश देश नहीं रहने वाला, ये टूटने वाला फूटने वाला ऐसा देश है, ये दुनिया को उनको दिखाना है। और जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया हिंदुस्तान के साथ, हिन्दुस्तान की सीमा पर उन्होंने अपनी शक्ति लगाई, सेना ला के बिठा ली है, वजह यह है कि हमारे मन में हमेशा यह भय है कि यह सेना अंदर आने वाली है और एक दफे तो आ चुकी है, एक दफे जो चीज बनती है दूसरे दफे नहीं बनेगी, कौन कर सकता है। तो ये बोझा हमेशा हमारे सीमा पर रखने का इरादा यह है कि हिन्दुस्तान अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरे साधनों से अपने विकास का काम जो कर रहा था वो न कर पाए, उनके कंधों पर वही बोझा तो था पहला, वो तो बोझा कायम रहे ही, लेकिन उसी के साथ हिन्दुस्तान की रक्षा का अब एक दूसरा बोझा उनके कंधों पर हम दे जाए कि जो बोझे के नीचे आके हिन्दुस्तान टूट जाए। उनको यह भी पता है कि हम जमहूरियत की हित मानने वाले देशों में हरेक आदमी को हरेक चीज कहने का मौका होता है, हक होता है, होना चाहिए। उन मानते हैं कि इतनी जबानों के यहां झगड़े हैं, इतने धर्म की बातें चलती है, इतनी कास्टिज्म यहां है और यहां एक तरफ नागा जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ चीजों की बात है, तीसरी तरफ ये जबान की बात, वो जबान की बात, वो ये समझते हैं कि ये देश एक देश नहीं रहने वाला, तो और एक धक्का दे दो और तोड़ दो, ये उनका इरादा है। और मैं मानता हूं कि 1965 में उन्होंने यही गलती, हिन्दुस्तान को वो पूरे समझते हैं, हिन्दुस्तान के इतिहास को पूरे समझते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं हमारे देश है, भी थोड़े अजीब ये मानना पड़ता है, मानना भी पड़ता है, क्योंकि देखिए आप 1965 में जब पाकिस्तान का हमला हुआ हमारे देश के खिलाफ, उस वक्त क्या बातें चली थी हमारे देश में, आप थोड़ा ध्यान कीजिए। मुझे देखें कि मैं उस वक्त ये मुझे मेरे मन में चिंता थी कि ये पाकिस्तान वाले और चीन वाले करके हिंदुस्तान के खिलाफ क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि देश में बन रहा था वो पंजाब में संत पद्धति ने उस वक्त जाहिर किया था कि वो आमोरण उपोषण करने वाले हैं। केरला में केरला बंद की बात करी थी, बंगाल में बंगाल बंद की बात करी थी, कई जगह ये हिंदू मुस्लिम रायत की हवा उठी थी, दिल्ली में ये अनाज के जो प्राइसेस थे उसके बारे में बड़ा जुलूस निकला था, मोर्चा बड़ा भारी मोर्चा निकला था। तो देश में ऐसी हवा बन रही थी कि अब क्या होने वाला है, गवर्नमेंट के कारण रहने वाली है या नहीं। उसी हालत में मुझे पता था कि पाकिस्तान वाले क्या कर रहे थे, तो मैं चिंता करता था मेरे मन में कि ऐसे वक्त पाकिस्तान ने किया तो क्या होगा, और बना ही होगा। पाकिस्तान ने उसी वक्त अगस्त के दूसरे हफ्ते में हमला तो किया, लेकिन बना क्या देश में, यह सब बंद दिन की जो बातें थी वो ही बंद हो गई। ये केरला की बात थी या जनसंघ की बात थी, इसकी बात थी, यह हमारी देश की बहादुरी है, खुदी हमारे देश के काम कि जब दुश्मन हमारे सामने आता है, जब दुश्मन हमारे सामने आता है और दुश्मन हमारे सामने आकर हमें हटाने की कोशिश करता है, तो हमारे बीच जो कुछ फर्क रहते हैं, मतभेद रहते हैं, दुश्मनी रहती है, वो हम छोड़ देते हैं। और एक देश के नाते, एक व्यक्ति के नाते हिम्मत से दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। मैं कल से दिखा रहा हूं, यह है जमहूरियत की ताकत, यह है हमारे देश की ताकत। लेकिन दूसरी बात मुझे कहनी है वो यह है, जब तक दुश्मन था उस वक्त यह बात ठीक रही, ताशकंद का समझौता हुआ और फिर बंद की बात शुरू हो गया। यह है हमारी देश की खुशी, तो यह है कि जब नहीं पुरानी बात है ना, हमारे महाभारत की कहानी कहते हैं ना कि जब कौरव पांडव दुश्मन नहीं होता तो कौरव पांडव एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन तीसरे कोई आए तो हम सब मिलकर 105 कहते हैं। तो ये ठीक है, ये संकट के समय हम 105 बनते हैं, लेकिन मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमें ये देश में हवा बनानी चाहिए कि न खाली संकट के वक्त लेकिन हमेशा के लिए हम 105 पक्के रहे, ये हवा हमारे दुश्मन बना दी। क्योंकि जब ये दुश्मन हमारा देखेगा ये हमेशा के लिए 105 रहने वाले हैं, मिलकर रहने वाले हैं, तब तक उनके मन में वो हिम्मत ही नहीं आएगी। मेरी कसौटी यह है रक्षा की तैयारी की, कि रक्षा की तैयारी मैं उसे कहता हूं कि जब इतना ही काफी नहीं कि हमारे देश के अंदर कोई दुश्मन चले आए और फिर हम उसको यहां से जटा के वापस देंगे, वो तो एक तरीका है, लेकिन सही तरीका यह है हम हमारी देश की इतनी तैयारी जारी रखें कि वो तैयारी को देख के और समझ के हमारे देश के खिलाफ कोई करने की हिम्मत ही न हो हमारे दुश्मन के मन में, ऐसी तैयारी हमारे देश में जारी है। ये काम हमें करना है और ये काम करना है तो जिम्मेदारी बहुत सारी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहला एक विभाग का काम शुरू होता है कि हमारी तरक्की हो, आर्थिक क्षेत्र में तरक्की हो, औद्योगिक क्षेत्र में तरक्की हो, खेती के काम में तरक्की हो, इसलिए हमने कुछ न कुछ काम जारी रखा था। अब दो बोझे हैं, साधन तो वही है, शक्ति तो वही है, पैसा तो वही है, तो ये अब दो कामों में बांटना है, वो विकास के काम में भी बांटना है और ये रक्षा के सामान के काम में भी बांटना है। तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ने वाले है, दुख भी बढ़ने वाला है। ये तो है कि देश की रक्षा भी हो, हमारा दुश्मन भी हम हटा सके और फिर हमें जो चाहिए वो मनपसंद हर व्यक्ति हमें मिलती रही होने वाली बात नहीं। मैं कुछ आपसे वोट तो नहीं मिले माने तो आपसे आप झूठ बात क्यों करवा दी। ये तो बात साफ है कि 10-20 साल देश के सामने बड़े बड़े गंभीर वक्त ये पर बड़ा गंभीर काल पूरे देश के सामने, यह 10-20 साल हमें सोच समझ के काम करना होगा, मुसीबतें उठानी होगी, देश को बचाना होता है तो अपनी मनमानी चला के देश को नहीं बचाना होता। याद है आपको कि जब चर्चिल ने हिंदुस्तान को जब बताया तब उन्होंने कहा कि मेरे पास आप कहा होंगे, मैं आप हम तो नहीं मान सके। जो देने वाले हमारे देश के नौजवान है उन्होंने तो बड़े बहादुर से काम किया। पाकिस्तान के खिलाफ जिन बहादुरों ने अपना काम किया वो एक एक बड़ी बड़ी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात। नौजवान बच्चे थे, होशियार थे, सुंदर थे। आपको बता रहा कि आर्मी में हम लोग लड़के कैसे चुन चुन के रहते। भगवान को माला पहननी हो तो बाहर में जाने वाला मालिक जिस तरह से फूल चुन चुन के लेता, चुन चुन के लेता, ऐसे आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में हम लोग लेते हैं, चुन चुन के लेते हैं। आपको पता नहीं, कई लोग नाराज होते हैं और मैं तो हमेशा खत लिखते हैं। अभी अभी मैंने देखा कि 2000 लड़के नेवी में हमें बुलाए थे, एप्लीकेशन आए थे, उनमें से 900 हमने चुने इंटरव्यू के लिए और वो 9 में से खाली 5 जो लाए थे आने के लिए। इसमें चुन चुन के लड़के देते हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान के चुने हुए लड़कों ने, बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगा के कुर्बानियां की हमारे देश के सीमाओं के ऊपर। क्यों किया? क्या वो नहीं चाहते थे अपनी जिंदगी की जो खुशियां थी, क्या उन्हें नामंजूर थी? वो भी अपना अपनी शादी अपना ब्याह करके खुशी से रहे, बड़ी बड़ी अच्छी कला का काम देखें, जो अच्छा सिनेमा भी चलते हैं वो भी जाके देखें, नाचे कूदे खेले, दुनिया की सब जो खूबियां और खुशियां है उसमें वो शामिल हो, शरीक हो। वो नहीं चाहते थे? वो भी चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के जो कुर्बानियां की, क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि वो मरे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां बाकी है, खुश है, सुखी है, इस काम के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां। तो ये जमाना, ये कुर्बानियां का जमाना है, क्योंकि दोनों तरफ ये पाकिस्तान वाली और मैंने मानता कि सही माने में कि जो कुछ हुआ है 1962 में वो देख के इतने जल्दी कुछ पाकिस्तान में हिम्मत करे तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान वालों की बात ऐसी है, मैं मजाक से नहीं कह रहा हूँ, कि हम लोग ऐसे हैं कि हम सोचते हैं और फिर कुछ ना कुछ करते हैं। करने के पहले हम बहुत सोचते हैं, हमारा तरीका हिंदुस्तान में जाने का बहुत सोचते हैं कि ये ठीक है या नहीं, ये सफल होगा या नहीं, ये करना ही नीति की नजर से ठीक है या नहीं, वहां ये बात नहीं चलती। वो पहले कुछ करते और फिर सोचते, वो उन्होंने पहले कुछ किया है, अब सोचने लगे, कुछ पछताने लगे, लेकिन उनके सामर्थ्य का जो स्नेह है वो उनको सोचने नहीं दे रखते। अभी सोचने लगे थे। ताशकंद में हमने ये देखा कि जो कुछ उन्होंने गलत कदम उठाया था उसके क्या नतीजे निकले, उसके बाद वो सोचने लगे थे। लेकिन ये चीन वाला बड़ा होशियार है, वो कहने लगा, सोचने लगा कि अब ये सोचने लगेंगे तो हिंदुस्तान की और उनकी दृष्टि होने का बल्कि दूसरा रास्ता है। तो उनकी सोचने की शक्ति उनके हटाने के लिए अब उनके प्रेसिडेंट वहां जाते रहे, उनके प्राइम मिनिस्टर वहां जाते रहे, अब उनको फंसाते रहे तो उनको कुछ हथियार देते रहे। भाई अब इतना भारी हथियार अमेरिकन वालों से लिया, इतना बड़ा पैटर्न टैंक था, इतना भारी वो सेबर जेट था, उसने काम नहीं किया चीनी वालों का हथियार क्या करने वाला था। वो तो एक हमारी शक्ति की बात है, ताकत की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लड़ने वाले हैं अपना काम करते रहेंगे, लेकिन लड़ने वालों का काम तब सफल होता है कि जिनके लिए वो लड़ रहे हैं उनकी क्या भावना है और वो काम अपना किस तरह से कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी है आपकी और मेरी। जो किसान खेत में काम करता है, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, जो कोई अफसर अपने ऑफिस में बैठ के काम करता है, जो व्यापारी अपने दुकान में बैठ के काम करता है, उनकी मन की भावना क्या है? वो ये सोचते रहे कि नहीं, मैं मेरे लिए ही सोच लू, मैं मेरे मुनाफे के लिए ही काम कर लू, तो फिर सीमा पर बैठने वाला भाई कहेगा कि आप आपके मुनाफे की बात करते हैं और मेरा खून क्या रास्ते में बहने वाला है? तो ये ऐसी 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 बात करती रही दुनिया के काम में। तो मैं आपसे इसलिए विनती करूंगा कि यह कुछ 10-7 साल चलने वाला काम है। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कॉल इट वुड, कि अभी कुछ कल होगा, ये होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो हवा नजर आती है, जो कुछ दिखता है, उनका चलन, चाल, रीत, ढंग चलने बोलने का जो सीखता है उसे हमें यह पकड़ के चलना पड़ेगा कि वो कुछ न कुछ करेंगे करेंगे तो कहेंगे हमें उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात है कि वो तैयार रक्षा की तैयारी का एक पहलू है। लेकिन जो दूसरा पहलू है अर्थात का पहलू है कि रक्षा की तैयारी तब होती है कि देश की औद्योगिक शक्ति हम इस तरह से कायम रखते और बढ़ाते जाए। क्योंकि आपको पता है कि आज हमारी रक्षा की जो सामग्री हम लाते हैं वो कई देशों से लाते हैं और दूसरे देश पूरा सामान आपके पास कभी नहीं देते। मुझे मेरे निजी अनुभव से आपसे कह रहा मैं 1900 जो पढ़ता रहा मुझे जाना था लेकिन शास्त्र में पूरा कर लिया। क्योंकि बातें तो इतनी दिल में है और दिमाग में है कि आपसे कितना कहूँ और कितना न कहूँ ऐसा ऐसा ख्याल मेरे मन। लेकिन एक बात आपसे कह दूँ वो ये है कि देश बाहर के देश तो ठीक है मित्र होते हैं लेकिन मित्रता की भी सीमा होती है ऐसे खाना में। मित्रता के लिए कोई मैत्री देशों के हिसाब में रखता नहीं। जब पहला पकड़ के कोई देश अपना दोस्त बनता है तो उसमें वो अपनी देश की भलाई का पहला सोचते हैं उसी दोस्त के रखते हैं। सिद्धार्थ यह कह रहा था कि 1964 में जब मैं रक्षा मंत्री के नाते गया अमरीका गया इंग्लैंड गया सोवियत रशिया भी गया बड़े अच्छे देश है भारी देश है धनी देश है और दोस्त भी है हमारा साथ में कुछ मदद भी करना चाहिए कुछ किया भी उन्होंने उस पर दिया। लेकिन मुझे ये अनुभव रहा मेरे मन पर यह असर रहा कि उन्होंने जो कुछ दिया है देने का फैसला किया उसके पहले हमें क्या देना नहीं उसका पहले फैसला किया था क्या कि वो अपनी ताकत से आपको बड़ा संदेश क्यों दे। तो इन कामों में औद्योगिक कामों में और रक्षा के काम में देश को बड़ा होना होता है तो अपने काम से होना होता है। आज देखिए हम ये हवाई जहाजों का काम कुछ हम कर रहे हैं अभी बेंगलोर में इधर उधर कुछ कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर ये हवाई जहाज हम बाहर से लाते हैं। अब समझिए कि हम किसी एक देश के खिलाफ न लड़े ऐसे हवाई जहाज देने वाली की मंशा हो तो लड़ाई के वक्त वो हवाई जहाज का सामान हमें बंद कर देते। इंग्लैंड ने अमरीका ने किया अभी सितंबर अक्टूबर में कहा गया है कुछ नहीं देंगे आज अब उसका नतीजा क्या होता मेरे मन में कोई शक नहीं उसका नतीजा यही होता कि पाकिस्तान और कोई हद से लड़ता और उसकी लड़ाई आप से आप बंद हो जाती। हम कई महीने लड़ जाते और उसकी लड़ाई अपने आप से बंद हो जाती। ये दूसरों के सामान से लड़ना दूसरों के हथियारों से लड़ना अपनी लड़ाई नहीं कर देती। तो हमें अपनी लड़ाई करनी हो अपने देश के स्वाधीनता की लड़ाई करनी हो तो इस देश के लड़ाई के जो सामान आवश्यक होता है वो पूरा से पूरा सलसफा सामान हमारे देश में हम तैयार करें ऐसी स्थिति हमें देश से पैदा करनी है। और ये भी आसान काम नहीं सालों का काम समझदारी से योजना से ठंडे मदद से बैठ के कुछ तैयारी करनी पड़ेगी और जिस तरह से हम तैयारी करते रहेंगे हमारा देश हम मजबूत बना सकते। लेकिन एक तो बात कहा ये देश मजबूत बना हुआ है क्योंकि उसकी बुनियाद जमुई अस्तर इस देश मजबूत देश को मैं मजबूत मानता हूं इसलिए कि इस देश के इरादे साफ है अन्याय से अन्याय से इस देश का भविष्य उज्ज्वल मैं मानता हूं इसलिए क्योंकि इस देश ने जो अपने सामने जो उद्देश्य रखे हैं उद्देश्य है एकता के सोशल जस्टिस के सामाजिक न्याय के और विषमता को हटाने के तो ये तो मेरे मन में कोई शक नहीं कोई करेगा कि ये देश या भारी देश बनने वाला है। लेकिन इसको भारी आखिर सही माने में बनाना हो तो हर एक आदमी को आखिर
अपने देश बनाते रक्षा करेगा
भारत की रक्षा करनी है ऐसा हम कहते हैं लेकिन क्या समझते हैं भारत की मानी खाली भारत की मानी है पहाड़ और नदियां भारत की मानी पहाड़ और नदियां नहीं भारत की मानी है भारत में रहने वाले हम जो लोग हैं स्त्री पुरुष बच्चे भारत को उठाना है और भारत को ऊंचा बनना बनाना है उसकी मानी यह है कि हिमालय की चोटी और भी ऊपर आए भारत को ऊंचा बनाना है इसकी मानी यह है कि भारत में रहने वाले हर एक आदमी को अपने दिल और दिमाग की ताकत और ऊंची बना दी ये जब तक काम काम करते रहेंगे तो भारत मजबूत बनेगा, और भारत मजबूत बनेगा तो भारत के खिलाफ दुश्मनी करने की हिम्मत दुनिया के किसी देश पर है।